अब उसी दिन की कुछ मजीद झलकियां। ये तो मोमिन के साथ और काफिर के साथ जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन ओवरऑल क्यामत के दिन का मंजर क्या होगा? आयत नंबर 25, व यौम तशक्कुकु समाउ बिल गमाम, और जिस दिन आसमान बादल के साथ फट जाएगा। व नुज़िलल मलाइकतु तंज़ीला, और फरिश्ते नाजिल किए जाएंगे फौज दर फौज। कहीं भी चढ़ाई होती है तो फौजें आती है ना, फरिश्ते अल्लाह की फौज बनकर आएंगे। लफ्ज़ देखिएगा, तशक्क शक से है, शीन काफ का तशक्क मुजारे वाहिद गायब मुअन्नस, ठीक है। असल में एक ता और भी थी, तशक्क था लेकिन वो ता चली गई, यानी आसमान फटेगा। ता क्यों आया? आसमान भी मुअन्नस अरबी में। बिल गमाम, गम से, गम छुपा देना। ये जो मैं गम है ना, वो भी यही है, दिल पे छा जाता है ना, गमाम। फिर उसके बाद देखिए, नुज़िलल मलाइकातु, नुज़िला मजहूल है, पैसिव वॉइस है, नज़ला हो तो उसने नाजिल किया, नुज़िला में ये नहीं पता चल रहा कौन नाजिल कर रहा है, और मलाइकात फरिश्ते तंजीला। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि ये किस वक्त की बात है, तो जरा यहाँ बिल गमाम को देखिएगा। बा के अरबी जुबान में 17 मानी होते हैं, देर आर डिफरेंट 17 मीनिंग्स ऑफ वर्ड बा। अब यहाँ देखिए, लफ्ज़ बिल गमाम है ना, इसके चंद मुख्तलिफ मानी करने से मानी कैसे बदलते हैं उसको दिखाती हूँ आपके सामने। अगर आप बिल गमाम में जो बा है ना, इसको बवजह के मानी में ले, इंग्लिश में कहेंगे बिकॉज ऑफ, तो मानी क्या हो जाएगा? जिस दिन आसमान बादल की वजह से फटेगा, यानी इतने बादल आसमानों पे होंगे कि उनके वजन से आसमान फट जाएगा। फिर बा हालिया भी होती है, किसी चीज का हाल बयान करती है, उसकी सिचुएशन, तो फिर मानी क्या हो जाएगा? आसमान फटेगा और बादलों की शक्ल इख्तियार करेगा, यानी अल्लाह ताला हमें खबर दे रहे हैं, हाल बता रहे हैं, जैसे सूरत अल-क़ारिया में आता है, तो बिल्कुल उसी मंजर को इधर पेश किया गया। इसी तरह बा का अरबी लफ्ज में मानी मुसाहबत का होता है, सोहबत, साथ रहना। जैसे मैं आपसे कहती हूँ मैं आपके साथ हूँ, बी साथ विद के मानों में इंग्लिश में लिख ले, तो फिर मानी क्या बनेगा? आसमान फट जाएगा और साथ ही बादल भी फट जाएंगे। और चौथा मानी इसका इमाम कुर्तुबी ने लिखा है कि बा अन के मानों में, अन से, तो मानी क्या होगा? आसमान शक होगा और उसके पीछे से बादल नमूदार होगा और जिसके साथ फरिश्तों का नजूल होगा। सूरत बकरा आयत 210 में भी हम पढ़ चुके हैं ना कि हल यंजुरून इल्ला अय्यातियहुमुल्लाहु, क्या वो इस चीज का इंतजार करते हैं कि अल्लाह ताला बादलों के परों में से निकल आए? ठीक है, तो गोया के कह क्या दिया कि क्यामत के दिन आसमान फटेगा, ये छत फटे तो क्या होगा भी, और कहाँ आसमान फटेगा, और उस वक्त क्या कैफियत होगी? वनुज़िलल मलाइकतु तंज़ीला, और ये तो है बेजान चीजें। असल उस दिन गलबा किसका होगा? अल-मुल्कु यौमा इज़िनिल हक्कु लिर्रहमान, उस दिन हकीकी बादशाहत सिर्फ रहमान की होगी। आज भी रहमान की है, लेकिन आज उसने छोटी छोटी बादशाहियां बांटी हुई हैं। सूरह फातिहा में क्या पढ़ते हैं? मालिकी यौमिद्दीन, मालिक तो वो आज भी है, लेकिन उस दिन वो ओनली मालिक होगा। अल मुल्क, खास बादशाहत, यौम इज़िन, इस सूरत में आपको लफ्ज यौम इज़िन भी बार बार दिखेगा और अभी भी दिख रहा है, उस दिन, दिस डे, निल हक लिर्रहमान, सिर्फ हकीकी बादशाह की होगी। आज तो बहुत सारे साहिब इख्तियार और इक्तदार है ना, उस दिन सिर्फ अल्लाह का हाथ होगा। वकान यौमन लिलकाफिरीन असीरा, और वो दिन काफिरों पर बड़ा मुश्किल होगा। असीर उसर से है, सूरत दोहा में क्या आता है? फाइन माल उसरी युसरा, युसर आसानी, उसर मुश्किल, काफिर पे ये दिन बहुत मुश्किल होगा, बहुत लंबा भी होगा, कठिन भी होगा, तकलीफ होगी। वजह क्यों? आप दुनिया में सोचिए कोई दिन मुश्किल कब होता है? जब हमने कोई वजन उठाया हो, चलना पड़े, बोझ हो, एहतसाब हो, किसी को कोई जवाबदेही करनी हो, क्यामत के दिन कुफार के साथ ये सब कुछ होगा। आमाल का बोझ उठाया होगा कंधों पे, तवील दिन है, मुंतजर है, متکبر قیامت کے دن آتا ہے کہ چیونٹیوں کی شکل میں ہوں گے اور مخلوق ان کے اوپر سے گزرے گی، ان کو رگیدتی ہوئی، ان کو رونتی بھی گزرے گی، تو اس بوجھ کی وجہ سے بھی مشکل ہوگی. اور دنیا میں کوئی امتحان کے رزلٹ کا دن دیکھ لیجئے، جن لوگوں نے مستیاں کی ہوتی ہیں نا، اس دن ان کے پھر ہاتھوں کے طوطے بھی اڑے ہوتے ہیں اور کانوں کے بھی اور پاؤں کے بھی. بالکل اس وقت کافروں کا یہی حال ہوگا، کیونکہ ان کو لگ پتا جائے گا کہ ہم نے اللہ کے دین کو کھیل بنایا ہوا تھا نا، مذاق سمجھتے تھے، سنجیدہ لیتے ہی نہیں تھے، اس لیے وہ سب بادشاہیاں ختم. سورۃ مومن میں آتا ہے یومہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیئا، جس دن وہ کھلے پڑے ہوں گے، بے نقاب ہوں گے اور اللہ سے کوئی چیز چھپی نہ ہوگی. پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے، لمن الملک اليوم، تو جواب آئے گا للہ الواحد القہار، صرف ایک اللہ واحد کے لیے جو غالب ہے. سورۃ مومن کی آیت نمبر 16 ہے. ایک حدیث سن لیجئے اس بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ میں آسمانوں کو اور دوسرے میں زمین کو لے گا. سوچیے امیجینیشن میں، پورا ایک بڑا گلوب، صرف یہ دنیا نہیں، زمین اور جو کچھ بھی جس میں مخلوق ہے، زمین کا لفظ ہے تو اس پوری زمین کو ہی سوچ لیں، ایک ہاتھ میں ہوگا اور دوسرے میں یہ آسمان ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان الملک ان الدیان این الملوک الارض این الجبارون این المتکبرون، میں ہوں بادشاہوں میں، میں ہوں فرما روا، اب کہاں ہے وہ زمین کے بادشاہ، کہاں ہے وہ جبار، کہاں ہے وہ متکبر. اور یہ روایت مسند احمد، بخاری، مسلم اور ابو داؤد میں تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ موجود ہے. ایسی ہی باتیں، یعنی اس دن اللہ چیلنج کرے گا، لے کے آؤ اپنی فوجیں، اپنی قومیں، اپنے لوگ، اور مجھے بتاؤ کہ کیا. اور یہ جو آسمان کے پھٹنے کی اور بادل کے سایہ فگن کی بات ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزول کا منظر ہے کہ آسمان پھٹے گا، بادلوں کا ایک بہت بڑا سا غبار آئے گا، اور جب وہ ہٹے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جلوب میں میدان حشر میں اتریں گے، جہاں ساری مخلوق ہوگی. ذرا بکرا 2:10 والی مثال آپ کو دے دی ہے. تو دن آسان نہیں ہے. آج دنیا کے غموں میں کھونے والے وہاں اپنے آپ کو کس حال میں پائیں گے؟ یہ کھیل تو نہیں ہے. بہت سارے لوگوں نے زیادہ سے زیادہ کیا سمجھا ہوا ہے آپ کو بتا؟ او قیامت بہت مشکل ہے، اوکے ہم بس جا کے اللہ سے کہ ایم اللہ، اللہ آئی ایم سو سوری، آئی فیل گلٹی، اللہ پلیز فار گیو می، اور اللہ کہ اچھا تم تو اتنی اسمارٹ ہو، اتنی نائس ہو، اوکے گو ہیڈ. اتنا آسان نہیں ہے، مشکل بہت ہے. آپ کہتے ہیں کہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الطلاق ہے، تیز ہے لیکن تو یہ نہیں ہے، طلاق، طلاق کا اپوزٹ ہے ملاقات کا دن، کیونکہ اس دن زمین و آسمان والے آپس میں ملیں گے، اللہ کو دیکھیں گے، فرشتوں کو دیکھیں گے، کیا حالات ہوں گے. بہت کچھ ہے اس کے بارے میں، لیکن چونکہ غیب کے معاملے ہیں تو زبان نہیں کھلتی. یہی دل میں آتا ہے کہ بس ہمارا حال اس دن اچھا ہو. اتنے حصے میں سے اپنے لیے محاسبے کی باتیں، کوئی عمل کرتے وقت چیک کریں، طریقہ ٹھیک ہے، انٹینشن ٹھیک ہے، اخلاص موجود ہے، اور دنیا سے فائدے لینے کی بجائے اللہ کے ہاں فائدوں کو پوچھیے. انشاءاللہ اگلی آیتوں میں بہت ہی تھیم آیت ہے اس لیسن کی. پڑھنے سے پہلے اگر ایک واقعہ آپ کو سنا دیا جائے تو امید ہے کہ جب آپ اس کو سنیں گے تو آپ اس کو سمجھیں گے، اور اس آیت کو پھر انشاءاللہ ہم اس شان نزول کے علاوہ الگ سے بھی عمل کے لیے دیکھیں گے. عقبہ بن ابی معید ایک شخص تھا، کافر تھا، مکہ میں رہتا تھا. وہاں بہت سارے ایسے اور بھی لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام کو دل سے مان لیا تھا، لیکن معاشرہ اور وقت کا رواج ان کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا. انہی میں سے یہ ایک شخص بھی تھا. اس نے ایک موقع پہ سب کو دعوت پہ بلایا، یعنی اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت پہ بلایا، تو گویا کہ لوگوں کو کھانے پہ بلانا اور ان کو انٹرٹین کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہر وقت پچھلے دور میں بھی رہا اور آج بھی رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس کے رشتہ دار بھی تھے، اس نے آپ کو بھی بلایا. آپ نے اسے کہا کہ میں تمہارے گھر اس وقت آؤں گا جب تم لا الہ الا اللہ پڑھو گے. बहुत अच्छा मौका होता है किसी को दीन की बात बताने का जब वो आपको दिल से बुला रहा हो। एक तो है रस्मन, वो कहेगा नहीं तो ना सही। एक होता है कि जब कोई कहता है कि आप आकर हमें इज्जत बख्शें या आपका आना हमारे लिए खुशी का सबब होगा। हम सब ऐसी बातों से वाकिफ हैं, लोग इस तरह की बातें करते ही रहते हैं, तो लिहाजा दूसरे लोगों की तरह इसने जब अल्लाह के नबी को भी बुलाया तो आपने कहा कि मैं आऊँगा, लेकिन यह है कि आप उस वक्त मुसलमान हो जाएं। तो अब इससे एक और चीज़ भी पता चलती है कि वक्त और हालात को देखा जाएगा फिर ये बात होगी। आम तौर पे ये बात हर वक्त करने की नहीं होती। पता चले कि आप अपने आप को किसी से ऐसी बात कर कर और ही पीछे कर दें। खैर, किस्सा मुख्तसर के इसने कहा कि ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। इतने मेहमान नवाज होते थे कि मेहमान के ना आने को ये अपनी बेइज्जती महसूस करते थे। और ये भी याद रखिए कि ये मुशरिक सरदार था और आदत ये थी कि जब कभी सफ़र से वापस आता तो मौजस लोग जो शहर के होते थे उनकी दावत करता, उसी में इसने अल्लाह के नबी को भी बुला लिया। खैर, आपने कहा कि मैं उस वक्त तक तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम इसकी गवाही ना दो कि अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं है और ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उकमा ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है। उसने ये कलमा पढ़ दिया। नबी सल्लम ने इस शर्त के मुताबिक खाना खा लिया। अब क्या हुआ कि उकबा का एक गहरा दोस्त था जिसका नाम उबई बिन खल्फ था। इसको जब पता चला कि उकबा मुसलमान हो गया, ये बहुत गुस्से में आया। उकबा ने उजर किया कि देखो, कुरैश के मुअज्जज मेहमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर आए हुए थे, अगर वो बगैर खाना खाए चले जाते तो मेरे लिए बड़ी रुसवाई थी। वो लोग बुरा समझते थे कि मेहमान खाना खाए बगैर जाए, इसलिए मैंने उनकी खातिर से ये कलमा कह लिया। उबई बिन खल्फ ने कहा कि मैं तेरी ऐसी बातों को कबूल नहीं करूंगा जब तक तू जाकर उनके मुंह पर ना थूके। ये कमबख्त बदनसीब दोस्त के कहने से इसी गुस्ताखी पर आमादा हुआ और कर गुजरा। अल्लाह ताला ने दोनों को दुनिया में भी जलील किया, गजवे बदर में दोनों मारे गए, और आखरत में इनके अजाब का जिक्र इस आयत में है कि जब आखरत का अजाब सामने आएगा उस वक्त नदामत और हसरत के मारे क्या कहेंगे। अब आयत सुनिएगा, आयत नंबर 27। और जिस दिन जालिम अपने हाथों को काटेगा, जालिम से मुराद उकबा बिन अबी मुईद, क्या करेगा? जुल्म क्या था इसका? तौहीने रिसालत, और कलमा पढ़कर पीछे पलट जाना। क्या काटेगा? अला यदई ही, अपने हाथों को। यदैन था, यद से तस्निया, दोनों हाथ काटेगा। मुहावरा है ये, यौम याउद्दु जालिम। ये जो लफ्ज है ना याउद्दु, इसको समझ लीजिए, अद याउद्दु के मानी होते हैं दांतों से पकड़ना या काटना। हमने सूरत नूर की आयत 55 में एक हदीस सुनी थी तो उसमें लफ्ज है मुल्कन आदन, वो भी ये लफ्ज है, काट खाने वाली मलूकियत। उर्दू में भी हम कहते हैं फुला अपनी उंगलियां खा गया। बहुत ही स्ट्रेस और परेशानी में अक्सर लोग अपने नाखून खाते हैं और इतने परेशान हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि खून भी निकल आता है। यही कैफियत है दांतों से काटना, जानदार चीज़ को काटना और जिंदा चीज़ को काटने के मानों में ये लफ्ज आता है। मुराद जाए कि वो काट जाएगा। साथ ही क्या कहेगा? यकूलू, वो कहेगा या लैतनी, ए काश मुझ पर, इत्तखज़्तु, मैंने बनाया होता, इत्तखज़ा यत्तखिज़ु से इत्तखाज़न, अखज़ा इसका रूट है, हमज़ा खाज़ा, बनाना पकड़ना। मुराद जाए कि मैं फुट स्टेप पे चला होता, किसके? मार रसूली, रसूल के साथ। ए काश मैंने रसूल के साथ बनाया होता, इख्तियार किया होता सबीला, रास्ता। हसरत का मुकाम है कि काश मैंने नबी का साथ दिया होता, इनकी इत्तबा की होती, इनके साथ ही हमें शामिल हो चुका होता। साथ रास्ता बनाने से मुराद ये कि आपके मिशन का राही बन चुका होता तो सहाबी कहलाता। या वही लता, हाय मेरी शामत, लई तनी, काश मैंने, लम अत्तखिस, ना बनाया होता फुलानन खलीला, फुलां को दोस्त। ये फुलां कौन है? उबई बिन खल्फ। काश मैंने उसको दोस्त ना बनाया होता, मेरी ज़िंदगी में एक मरहला ऐसा ना आया होता कि मेरे दिल में अल्लाह के नबी की दावत की सच्चाई जो आ गई थी इसके बाद वापस हो गई सिर्फ एक दोस्त की वजह से। لقد ادلن یعنی ذکری، اس نے مجھے بٹکا دیا ذکر کے میرے پاس آنے کے باوجود. لفظ ذکر عربی زبان میں مختلف معنوں میں آتا ہے، اس میں دو معنی ہیں، ذکر نصیحت اور ذکر قرآن. سورہ ہجر سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں. تو دونوں معنی ٹھیک ہیں. ذکر سے ایک مراد ہے کہ مجھے اللہ کے رسول نے پوری بات سنا دی تھی، اور دوسرا یہ کہ میری زندگی کے فلاں لمحے میں حق کا پیغام میرے دل کے تاروں کو چھیڑ چکا تھا، اس کی سچائی میرے دل میں آ گئی تھی. جیسے وہ سورۃ نساء میں آتے ہیں نا، آیت 63 میں، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور اے نبی ان سے ایسی بات کہیے جو ان کی روح کی گہرائیوں میں اتر جائے. تو اپنی کیفیت بیان کر رہا ہے کہ جب میں نے قرآن سنا تھا تو واقعی یہ میرے دل کے تاروں کو چھوتا تھا، لیکن پھر کیا ہو گیا، کسی کی باتوں میں آ کر میں اس کو چھوڑ گیا. لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ، اس نے مجھے اس یاد دہانی سے، اس قرآن سے، اس نصیحت سے دور کر دیا، اور اب دور ہونے کے بعد مجھے احساس ہوا ہے، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، کہ شیطان تو انسان کو آخر دغا دینے ہی والا ہے. خزول خزلہ سے ہے، کسی کی مدد نہ کرنا، ساتھ چھوڑ دینا. اور شیطان کی یہ صفت سورہ آل عمران 160 اور سورۃ ابراہیم آیت 22 جس میں شیطان کی سپیچ ہے، اس میں بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ شیطان وقت پڑھنے پہ چھوڑ دیتا ہے. اور یہاں شیطان سے مراد خاص شیطان بھی ہے، لیکن یہاں اس مراد شیطان نما انسان جو دوستوں کے روپ میں اور بعض دفعہ رشتوں کے روپ میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں. کاش میں نے ان لوگوں کی بات نہ مانی ہوتی. کتنا عبرتناک واقع ہے. دیکھیے ایک چھوٹی سی بات لکھ لیجئے کہ جتنا ایمان اتنی عبرت. ہم کہتے ہیں نا، کسی کی بات سن کر عبرت حاصل کرو. ہم نے یہ واقعہ سنا، اب ہم میں سے کچھ لوگ جو ہے نا اس کو، ان دونوں کا واقعہ سمجھ کر اوپر گزر جائیں گا. ہمارے سر سے ہم کہیں گے ہاں کتنا برا تھا، توبہ توبہ، ایسا کیا ویسا کیا. لیکن ہم میں سے جس کے اندر جتنا ایمان ہوگا نا، ہم اتنا اس میں سے اپنے لیے عبرت لیں گے. خود سے چند سوال پوچھتے ہیں، کیا میری بھی کوئی ایسی دوست ہے؟ کیا میرا بھی کوئی ایسا پیارا ہے؟ کیا میری بھی کوئی ایسی مصروفیت ہے؟ کیا میری بھی کوئی ایسی ترجیح ہے کہ جو مجھے اللہ کے رسول کے راستے اور قرآن سے دور کر دیتی ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی ایسی کہانیوں سے بھری پڑی ہوگی. آج بہت سارے لوگ عقبہ بن ابی معیط کی طرح اس قرآن کی سچائی کو دل سے مانتے ہیں. ان کو بتائیے قرآن دل کے تاروں کو چھوتا ہے، لیکن کیا کیا جائے اس دنیا کا جو بیک مرر ہونے کی بجائے بیک مرر بن کے ہماری آنکھوں کو ہیرا کرتی ہے. چھوٹے چھوٹے فائدوں کی خاطر یہ ذکر ہم سے چھٹتا ہے، چھوٹے چھوٹے نقصانات کے اندیشوں سے یہ قرآن ہمارے ہاتھ سے چھٹتا ہے. اور آپ نوٹ تو کیجئے، بعد اس جا انی، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اس کے بعد یہ کہ مجھ کو آ گیا، میرے تک پہنچ گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بری دوستیاں، بعض دفعہ اچھے دوست ہوتے ہیں لیکن وہ اچھے انسان ہوتے ہیں، برے دوست ثابت ہوتے ہیں. بعض دفعہ ہم دوسروں کی نظروں میں اچھا بننے کے شوق میں اللہ کی نظروں سے گر جاتے ہیں. تو یاد رکھیے، اچھی دوست بننے، اچھی بیوی بننے، اچھی سہیلی بننے، اچھی بیوی، اچھی ماں بننے کی کوششوں میں کہیں ہم اچھی بندی بننے سے نہ رک جائیں. آج ہم سب اپنی زندگیوں پہ دیکھیں تو ہم اپنے سے زیادہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ ہماری ہر کمی بیشی کے پیچھے کوئی دوسرا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ دیکھیے، فلانن کہہ کر بات کھول دی. اوپن چوائس، کوئی بھی اپنے فلاں کا نام اس پہ لکھ لے کہ میں نے اس فلاں کی باتوں میں آ کر چھوڑ دیا. اشارہ اس بات کا کہ تم اپنے اس فلاں کو سوچو. جمع کر دی وہ بات کہ جو دوست کسی معصیت اور گناہ پر جمع ہو اور خلاف شرع چیزوں میں تو ایک دوسرے کی مدد کریں، وہ اسی کے اندر آتے ہیں. قیامت کے دن ایسی گہری دوستیوں پہ لوگ روئیں گے. مسند احمد، ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے ابو سعید الخدری سے، اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا، تم مت دوست بناؤ سوائے مومن کے، ولا یاکل مالک الا تقی، تمہارا مال نہ کوئی کھائے سوائے متقی آدمی کے. ज़ाहिर है कि जब दोस्त हमारी ज़िंदगी में अहम होते हैं तो या वो हमारे घरों में खाते हैं या हम उनके घरों में खाते हैं। अल्लाह के नबी ने यहाँ खाना खिलाने या किसको खिलाना उसके अदब भी बता दिए। तुम जो सुबह से शाम तक पका पका हलकान गई, तो जो आके खा गए उन्होंने इशा भी नहीं पढ़ी, फजर भी नहीं पढ़ी, तो तुम्हारा खाना ज़ाया हो गया। और अगर तुम्हारे खाए हुए खाने को खा कर किसी ने नमाज तो छोड़े, उसके साथ और नेकियां और तहज्जुद भी पढ़ी, और क्या कुछ उसने कर दिया, तुम्हारे खाने को चार चांद लग गए। तो हदीस देखिए कितनी खूबसूरत है कि किसी गैर मुस्लिम को अपना दोस्त ना बनाओ, और तुम्हारा माल दोस्ती के तौर पर सिर्फ मुत्तकी आदमी खाए, गैर मुत्तकियों से दोस्ती ना करो। हजरत अबू हुरैरा से एक रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अलमरु अला दीन खलीलिही, हर इंसान आदतन अपने दोस्त के दीन और तरीके पर चलता है, लिहाजा दोस्त बनाने से पहले खूब गौर कर लिया करो कि किसको दोस्त बना रहे हो। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी से पूछा गया, हमारे मजलसी दोस्तों में से कौन लोग बेहतर है? तो आपने फरमाया, वो शख्स जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाए, और जिसकी गुफ्तगू से तुम्हारा इल्म बढ़े, और जिसके अमल को देखकर आखरत की याद ताज़ा हो जाए। चलिए हम तीन क्राइटेरियन बना लेते हैं इस हदीस में जो मिले अपनी दोस्तियों के लिए। क्या मुझे अपनी दोस्त को देखकर अल्लाह याद आता है, यानी वो अपने चेहरे मुरिए हाल ओलिए तौर तरीके से अल्लाह की बंदी दिखती है और दिखता है, जो मर्द हैं तो मर्दों के दोस्त। और यहाँ दोस्त से मुराद याद रखिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ राहो रसम होती है, अलैक सलैक उर्दू में हम बोलते हैं, हाउ टू नो, हेलो, हाय, बाय, वो दोस्त नहीं होता। दोस्त वो होता है जिसका असर आपकी ज़िंदगी में दिखता है। अब ये नहीं मतलब कि हम एक अलग मुस्लिम स्थान बना लें, तौहीद स्थान बना लें, मुबाहद स्थान, कुरान वाले बना के बस उनसे सलाम और दूसरों को देखे तो मुंह फेर लें, ये मुराद नहीं है इससे। यहाँ दोस्ती अपनाइत के मानों में। और याद रखिए, जब जिंदगी में कुरान आता है ना, दोस्त वो रहते हैं, खुशी गम पे मिलते हैं, मौके पे जब आप मिलते हैं आप बताए, लेकिन उनसे अपनाइत नहीं महसूस होती, वो अपनापन ख़त्म हो जाता है, लाइक माइंडेडनेस नहीं होती, डिस्टेंस प्लीज वाली कैफियत हो जाती है। तो पहला मेयार क्या है, जिसको देखकर अब याद आए। सोचें अपने आप को, अपने प्यारों को, इसमें चाहे आप उनको दोस्त के, कजन्स के, सहेलियां के, रिश्तेदार के, बस वो लोग जिनके साथ मैं उठती बैठती हूँ, उठने बैठने वाले लफ्ज़ लिख लें, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कह दिया आदमी अपने दोस्त के दिन पे, ये सच है कि नहीं है? सबसे अहम हमारे लिए हमारे दोस्त ही होते हैं, उन्हीं की नज़रों में जचते हैं। बगैर फैशन के कपड़े क्यों नहीं पहनते, दोस्त से क्या कहेंगी, ऊंची कमीज पहन के आ गई, छोटी कमीज पहन के आ गई, ये क्या कर दिया। गैरों से तो हमें परवाह नहीं होती, किसी को हमारा नाम भी नहीं आता, कोई देख भी ले तो हमें क्या कहेगा। हम हमेशा अपने दोस्तों के लिए क्यूरियस होते हैं, घरों में जितनी चीज़ें खरीदते हैं लाते हैं दोस्तों के लिए, एक तो खुश होंगे, एक दिखाएंगे, देखो मेरे घर जो कुछ है तुम्हारे नहीं। अंदर एक इस्तकबरा वाली कैफियत होती है, बड़ाई तलब करना, और ऊपर से नाम भी लगाते हैं कि चलो दोस्तों को दिखाते। हर दावत के पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है कि नए सोफे आए हैं जरा वो दिखा देते हैं इनको, और नए कपड़े भी तो पहनने, और वो नया डिनर सेट भी तो दिखाने, चले खाना भी खिलाते हैं, आके ये डिनर तो देख ही जाए हमारे घर से इल्ला माशाल्लाह। दूसरा क्राइटेरियन, इसकी गुफ्तगू से तुम्हारा इल्म बढ़े। कौन सा इल्म बढ़ता है मेरा अपनी दोस्तों में बैठकर? शॉपिंग मॉल्स का, सेल्स का, वाउचर्स का, कॉन्सर्ट्स का, पार्टीज का, दावतों का। अमूमन गुफ्तगुओं में इल्म होता, सिर्फ दुनिया का इल्म। और तीसरा, जिसकी अमल को देखकर आखिरत की याद आए। अल्लाह से लौ लगाने वाले लोग, परवाह ही कोई नहीं है, ज़रूरियात की बुनियाद पर जी लें तो बहुत है, उनको इसकी परवाह नहीं। कह रहे तुमने ये काले सोफों के साथ नीले कुशन रख लिए, हाओ कारपेट तो इस रंग का है और नैपकिन तो इस रंग के, क्या हो गया तुम्हें, ये बातें नहीं करते वो लोग। तो दोस्ती आपको तो ईमान का हिस्सा है, इस पर एक बुक है पूरी, अल बुग्ज़ु फिल्लाह वल हुब्बु फिल्लाह, दोस्ती और दुश्मनी अल्लाह के लिए। अल्लाह के नबी के एक हदीस का खुलासा है कि जिस शख्स ने दिया तो अल्लाह के लिए, ना दिया तो अल्लाह के लिए, मन आत अल्लाही, अता किया, किसी को दिया, क्या दिया, माल दिया, बेटा दिया, बेटी दी, रिश्ता दिया, रिश्ता लिया, जिसने दिया तो अल्लाह के लिए, जिसने लिया तो अल्लाह के लिए, उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। आज आप इसको थोड़े से नेगेटिव रंग में देखें तो अमूमन हमारा मेयार क्या है, खानदान, रिश्तेदारियाँ, लोग क्या कहेंगे, बातें हैं, चूँकि उनसे दावत खाई है तो हमें भी खिलानी है, ना किया तो बातें करेंगे, फलां बहन ने जोड़ा दिया मैं न दूंगी तो ये होगा, फलां लड़की शादी हो के आई है उस दुल्हन को बुलाना है, दावत खिलानी है तो नहीं खिलाएंगे तो बातें होंगी, क्या यही कुछ नहीं करते रहते? सिर्फ इस सोच से कि चूंकि सब कर रहे हैं मैं नहीं करूंगी तो मुझे बातें होंगी। अच्छा फिर उसके बाद दावत भी इतनी नहीं, भाई सिंपल पका ले यहाँ पे खाना पका ले, नहीं वो फलां बहन के घर हुई थी उसने 4 खाने पकाए थे, तो ये बहू क्या कहेगी कि ये खाला को इतनी कंजूस है इसने 1 खाना पकाया। सच बताएं हम जब ये कहते हैं ना कि अत्तमोताम, वहां भी अक्सर अत्तमोताम नहीं होता। पिछली वाली आयतें याद करें कि जरा बराबर भी रियाकारी होगी ना दिल में दिखावा, कि आज जरा दिखाते हैं आज हम क्या खिला रहे हैं, क्या पका सकते हैं, हम कितने खाते पीते लोग हैं, हम रोज क्या खाते हैं, तो अल्लाह कहते रखो अपने पास। सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपकी मेरी कबूल होती है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, मन आता लिल्ला, बीच में कोई जरा बराबर झोल लूप होल आने ही नहीं देना नियतों पे, फिर बात बनेगी। माज बिन जबल से एक रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई, मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई। कहा अल्लाह के नबी किसकी किसके लिए आपकी मोहब्बत वाजिब हो गई? कहा उनके लिए जो मेरे लिए मिलते और मेरे लिए बिछड़ते। इंशाल्लाह आपको इस पे पूरी बुक पढ़ानी है अल्लाह ने चाहा तो। दूध का दूध और पानी का पानी अलग होता है, हालांकि बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है, क्योंकि वो टॉपिक सिर्फ मेरे और आपके अपने साथियों दोस्तों का नहीं, वो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम से दोस्ती का भी है, और मैं सोचती हूँ कि वेस्ट में हम रहने वाले लोगों को तो लाजिम है ये टॉपिक पढ़ना। कभी सिर्फ मजबूरियों के नाम पे हम गलत कामों में शामिल होते हैं, वैलेंटाइन भी मनाना है, ये भी करना है, क्रिसमस पे हैप्पी क्रिसमस भी कहना है, मैरी क्रिसमस भी कहना है, दिस एंड दैट, ये कुछ करते रहते हैं। जी आप जी
प्लीज बुक का नाम रिपीट कर देंगे?
दोस्ती और दुश्मनी का म्यार, ये तफीमो सिन्ना सीरीज़ की जिल्द है बुक है। बोलिए।
मैंने इसी से मुताबिक सवाल पूछना था, जो हदीस आपने कही कि उसके ऊपर माल नहीं खर्च करना चाहिए गैर मुस्लिमों पे, तो वो हम दावा के लिए उनको
देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दी ये बात कि यहाँ दोस्ती से मुराद अपनाइयत है। हम तो गैर मुस्लिमों को खिलाएंगे भी पिलाएंगे भी बहुत कुछ करेंगे, मुराद के अपनाइयत ना हो। इधर खास तौर पे दोस्ती दिल के ताल्लुक के लिए, उठना बैठना जिनकी मजलिसों में मजा आए, जिधर जाके हम पे बहक जाते हैं, जिधर जाके हम इंजॉय करते हैं, वरना तो नॉन मुस्लिम को खिलाना तो और बड़ी नेकी होगी, ठीक है? तो वो तो अलग चीज है,
सोशलाइज करने की बात,
सोशलाइजिंग। और अगर नॉन मुस्लिम से जो मिलना है वो भी तो अल्लाह के लिए मिलते हैं कि उसको इस्लाम का कुर्ब मिले। यहां मुराद ये कि आपको उठना बैठना कैसे, और मेरा ख्याल है कि हमें से हर एक इसको जानता है कि अच्छी दोस्तियां और बुरी दोस्तियां क्या होती हैं। वो दोस्तियां जिसमें कपड़ों जेवरों की बातें हैं, खाने की बातें हैं, ये नहीं डराती रहती हैं दोस्तें, देख लो ये ना करना, कभी सासों से डराएंगी, कभी ससुरालों से डराएंगी, कभी दुनिया से डरते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। फिर इसमें एक और चीज़ जो साइड का छोटा सा इशू है, साइड इशू तो नहीं बहुत बिग इशू है आजकल हमारी सिस्टर्स का, कि शौहर बीवी की दोस्ती, और शौहर अगर दीन पे नहीं है तो फिर उनके दोस्तों के साथ दोस्ती की क्या हद है, और भाईजान और फलां जी और भाभी जी के नाम पे के, ये बहुत वाइड स्पेक्ट्रम टॉपिक है, इंशाल्लाह हम इसको करेंगे। चंद बातें नोट कर लीजिए। किसी का कॉल है कि दोस्त 3 तरह के होते हैं, कुछ खुराक की तरह हर वक्त जरूरी है आपको, जो आपको एनर्जी देते हैं, ईमान मिलता है। आप ऐसे दोस्तों से दूर रहें तो आप ऐसे कुमलाने लगते हैं जैसे आपके चेहरे से चमक ही चली गई। कुछ दोस्त दवा की तरह होते हैं जो सिर्फ बीमारी में काम आते हैं, और कुछ दोस्त खुद बीमारी होते हैं जिनकी आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। खुद को पहचाने के हम किधर है। देखिए ईमान की गजा के लिए हमें कुछ दोस्त अच्छे चाहिए, अच्छे कामों के लिए अच्छे दोस्त चाहिए होते हैं, और इसी तरह कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास गुजरना भी नुकसानदेह। दोस्त पर ईमान का इन्हिसार है, अलमरु अला दीनी खलीली, तो फिर कितना सोचने की जरूरत है। इसी तरह बाज दोस्त अच्छे दरख्तों की तरह होते हैं, थके हों तो सुकून देते हैं, भूखे हों तो फल देते हैं, और सोना चाहें तो छौ दे देते हैं, कुछ ना फल देते हैं ना साया देते हैं ना कुछ देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लम ने एक दुआ सिखाई थी, हम उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका वा हुब्ब मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बका। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका वहुब मैं युहिब्बुका। इसका मतलब क्या है कि ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करती हूँ तेरी मोहब्बत का, कि मुझे तुझसे प्यार हो जाए, और मोहब्बत उसकी जो तुझसे प्यार करे। ذرا جو اللہ سے پیار کرے گا تو وہ ہمیں بھی تو اللہ کا پیار ہی سکھائے گا نا. اور اس کام کی محبت جو تیری محبت تک پہنچا دے. اور اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیری محبت کا اور اس کی جو تجھ سے محبت کرے. اور آپ نے حضرت یوسف کا بھی تو کال پڑھا نا, موت کے وقت ان کی کیا دعا تھی کہ اللہ مجھے تو اچھا ساتھی دے, ادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کے وقت کیا جملہ تھا, اے اللہ بررفیق الاعلیٰ, کہ اللہ مجھے بہترین ہستی کی دوستی دے دے, یعنی اپنی دوستی دے دے. تو لہٰذا اپنی دوستیوں میں ہم دیکھیں گے تو بات سمجھ آئے گی, اور خاص طور پہ اب جو اگلی آیت ہے وہ دوستیوں کے تناظر میں اور بھی زیادہ سمجھ آتی ہے.